تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے آج کا سبق شروع ہوگا. مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہود اور نجران کے نصارہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی قوم میں سے ہیں, لیکن عملاً دیکھا جائے تو سب کے سب کے نظریات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریے سے بدل چکے تھے. آج کے سبق میں حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کو شرک سے روکنا اور اس کے مدلل جواب دے کر یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ صرف شخصیات سے نام جوڑ لینے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ ان کے مشن کے ساتھ بھی نہ ہوں. اور یہ بات کہتے ہوئے ایک دم میرے دل میں تکلیف ہوئی کہ بالکل یہی معاملہ تو آج ہم مسلمانوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ جب مکہ یا مدینہ والوں کی یہ باتیں ابراہیم کے ناطے سے سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنے بیوقوف تھے, عمل تو کرتے کوئی نہیں تھے اور نسبتیں بڑی جوڑتے تھے. تو آج امت مسلمہ کو ذرا پوچھ کے تو دیکھیے کہ آپ کے اللہ کے نبی سے نسبت ہے کہ نہیں, تو شاید وہ آپ کو منافق کہہ دیں اور نہ جانے کیا. لیکن اگر عملاً دیکھیں, اپنی زندگی کے نقشوں کو دیکھیں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بعض دفعہ تو بہت دور کا بھی تعلق نہیں دکھتا. دوسری چیز ہم اس میں یہ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ناطے سے کہ قوم بتوں کی پوجا کسی نفع اور نقصان کے لیے نہیں بلکہ باپ دادا کی تقلید کے نام پہ کرتی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ باپ دادا اتنا بڑا بت ہیں کہ انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی کسی کام کو کرتے ہوئے. صرف یہی دلیل بہت ہے کہ چونکہ ہمارے پہلے کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں. آج کے دور میں اس کو یوں لے لیجئے کہ بہت ساری رسومات اور بہت سارے رواج کرنے والے, آپ ان سے ان کا فائدہ یا نقصان پوچھیں تو وہ صرف یہی جواب دیں گے کہ یہ تو شروع سے ہمارے خاندانوں میں ہوتا آیا. پھر آج کے سبق میں بہت خوبصورت دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی, اور ان دعاؤں کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ ابراہیم کو اتنی خوبصورت دعائیں مانگنی کس نے سکھائیں, کیا سوچ تھی کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت دعائیں مانگنے والا بنایا. پھر اگلی چیز جو آج کے سبق میں ہائی لائٹ ہے وہ ہے آداب, ادب, مینرز آف دی پروفیٹس, کہ جب دل میں کسی سے محبت اور عاجزی ہوتی ہے تو انسان کے ایک ایک لفظ سے, ایک ایک ایکشن اور آنکھ کے اشارے سے بھی اس کی بات کو ماننے سے یہ چیز دکھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے قلب سلیم کیا ہوتا ہے, اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم دے دے. آج کے سبق میں ہم اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دیکھیں گے. پھر اسی طرح آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن گہرے دوست انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. پھر اگلی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جھٹلانا اور ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اور حضرت نوح کا ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر بنیادی بات کی دعوت دینا اور گالیاں سن کر بھی بدمزہ نہ ہونا. پھر قوم عاد کا قصہ جس کا میسج یادگاریں قائم کرنے کی بجائے ایسے کام کرو جو یادگار بن جائے, صرف نمود و نمائش کے لیے عمارتیں بنانے کی بجائے وہ کام کر لو کہ جو حقیقت میں تمہارا نام پیچھے رکھے. انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے. چھوٹی آیتیں ہیں, ردھم والی ہیں, آیتوں میں بات سمجھ آ جاتی ہے, تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبق کے جس کی تفسیر آیتوں میں ہی موجود ہے. ہم ہلکی ہلکی وضاحت اپنے لیے لیتے ہوئے جہاں بھی ایسی چیز آئے گی جس کو ہم اپنے لیے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں اس پہ بات کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 69 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتلو علیہم نبأ ابراہیم, اور پڑھ کر سنائیے ان کو ابراہیم کی خبر. واتلو تلا یتلو تلون تلاوتن, صرف یہ نہیں کہا کہ بتا دیں, لکھی بھی ایک پرچی ان کو دے دیں, بلکہ پڑھ کر سنائیں, کیونکہ پڑھ کر سنائی ہوئی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے. علیہم ان کو, کون ہے ہم کے نیچے لکھ لیجئے مشرکین مکہ, مکی صورت ہے تو مکہ والوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم کی نسل سے ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ان کو ریجیکٹ کرو, نہیں نہیں غلط کہتے ہو, ایسا نہیں تھا ویسا تھا, اور دوسرا یہ کہ اچھا تم ان سے نسبت جوڑتے ہو تو ذرا محاسبہ کر لو. یہ ہے خوبصورت طریقہ, ہم بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, تم نہیں ہو ان سے, تمہیں نہیں پتا وہ کون تھے. نہیں نہیں نہیں, हाँ, तुम कहते हो हम इब्राहिम के फॉलोअर्स हैं, तो जरा इब्राहिम को भी देख लो, वो कैसे थे और तुम कैसे हो। तो गोया के सिर्फ जुबान के दावे काम नहीं करते जब इंसान का अमल उसको पीछे छोड़ दे। एक रिवायत में आता है कि जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ दिया, उसका नसब उसको नहीं बचाएगा। तो इवन अगर आज तुम इब्राहिम के नसबी बेटे ही क्यों नहीं हो इस्माइल के नाते से, फिर भी तुम्हारा इब्राहिम से दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। नबा कहते हैं अहम खबर को किसी को सुनाई जाए तो उसको उसका असर हो। एक होती है रात आती उल्टी सीधी बातें, हम सुनते ही रहते हैं सारा दिन, कानों में पड़ती हैं। नबा होती है अहम खबर, इसी से लफ्ज नबी भी है, सूरत नबा भी है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबा इल अजीम, 30वें पारे की पहली सूरत, और उस एक थीम पे पूरा पारा चलता है यानी कयामत। तो गोया कि यहाँ ये कहकर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर इनको सुना दो, तो बता दो कि खबर बड़ी अहम है, नबा है ये इब्राहिम, इब्राहिम की। इब्राहिम पे हम पहले बात कर चुके बहुत डिटेल से, कौन थे, लफ्ज इब्राहिम दो लफ्जों का मजमुआ था, पिछले नोट्स को जाके ढूंढिएगा। हुआ क्या था, इस काल अली अभी ही, जब उसने अपने बाप से कहा, वह कौमी ही, और अपनी कौम से कहा, मा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो। देखिए सूरत शोरा में जो अंबिया कराम के किस्से आए हैं ना, इसका खुलासा क्या है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जिसको आप कहते हैं चलो आगे चलो, इशारे हैं सिर्फ, पूरी पूरी खबरें नहीं है, क्योंकि पीछे सूरह हूद में डिटेल से पढ़ चुके हम, और इसी तरह आगे पीछे बहुत जगह आता है। तो यहाँ पैगाम पे नजर है, और लव सूरत का नाम शोरा ज़हन में रखिए, अल्लाह के नबी को शायर कहने वालों को पिछले अंबिया के किस्से सुनाए जा रहे हैं कि देखो ये उसी कलाम की कंटिन्यूएशन है जो के पीछे से चलता आया। तो दो टोक बात थी, बाप और कौम से कहा मा ताबुदून, किन की तुम इबादत करते हो, मन भी नहीं कहा, माँ कहा, क्योंकि जिनको वो पूछते थे वो गैर आकिल हस्तियां थी, पत्थर और लकड़ियों के बुत थे। तो बात सीधी सी है, कालू नाबुदु असनामन, कहने लगे हम तो बुतों को पूछते हैं। अब ये लफ्ज असनाम भी मैं नहीं बताऊंगी आपको, पीछे सारे लिखा चुकी हूँ, वसन सनम। तो कहते ये तो हाँ बुत है, खुद मानते थे ये बुत है, कोई बड़ी बात नहीं है। फनजल्लू, और हम बैठे रहते हैं, ये जो लफ्ज है ना नजल्लू, अब इसका रूट आप गलत नहीं लिख सकते, जोए लाम लाम, पीछे भी आपको बताया था जल्ला और बाता, बाता होता है रात के वक्त किसी काम का करना, और जल्ला होता है सुबह के वक्त काम का करना। फा ना बस हम, ये दो अलग लफ्ज हैं, जल्लू बैठे ही रहते हैं, सुबह होती है तो हम आके इनके सामने बैठ जाते हैं, लहा आकिफीन इनके सामने इतिकाफ करते हुए। आकिफीन वही लफ्ज है जिसे अकफा या किफू और एतिकाफ, इतिकाफ का मानी क्या कि जमकर बैठना, किसी जगह ऐसे महब हो जाना कि इर्द गिर्द की होश ना रहे। तो इशारा कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई हम हैं, हम सुबह होती है तो अपने बंदर में जाकर इन बुतों के सामने बैठ जाते हैं, हमारा ध्यान इनमें, हमारी सोच इनमें। देखिए ये है डिटाई, अब आप पढ़ते जाएं, फिर इसमें हम अपने अमल की बातें एक्स्ट्रा लेंगे। मुकालमा सुनिए जरा, इब्राहिम का अंदाज दो टोक और कौम का हर जवाब बेअकल, सीधी सी बात है, हाँ भाई हम बैठते हैं करेंगे, बस हमसे बातें नहीं करो, तुम तो वहाबी लगते हो, ये तुम तो कोई अहले हदीस लगते हो, और तुम तो कोई बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट लगते हो, हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे। और यहाँ देखिए फनजल्लु लहा आकिफीन में कमिटमेंट, जैसे वही बात कि करती हूँ, करती थी, करती रहूंगी, हालांकि मुझे पता कि ये गलत है। तो बस दफा लोग गुनाह पर इतने स्टबन होते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें उनकी स्टबननेस दिख रही है, ठिठाई, जमे हुए, हाँ गलत काम है लेकिन हम करेंगे, अच्छा कोई बात नहीं। अब इब्राहिम इसके जवाब में कितनी बुरी बातें कह सकते थे, लेकिन आप फील करें, बहस का अंदाज नहीं, ये जो हम हर चीज में लुकमा देना चाहते हैं ना, ये नबियों की सुन्नत नहीं है। एक बात अगले ने ऐसी कह दी कि जो आपके मिजाज को बुरी लगी, आप उसको इवॉइड करें, अगली बात करें। काला हल यस्माउनकुम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या वो सुनते हैं तुम्हारी बात को, इज तदउन, जब तुम उनको पुकारते हो, तदउन में इस वक्त वैसे तो पुकारना है, दा टू कॉल, लेकिन यहाँ टू सीक के मानी है दुआ, जब तुम इनसे दुआएं मांगते हो और जब तुम इनकी कब्रों पे जाकर इनसे बातें करते हो, गिड़गड़ाते हो, तो क्या वो तुम्हारी दुआएं सुनते हैं। पहली बात लिख लीजिए, यहां से आपको दलाइल मिलेंगे कि माबूद कौन होता है, किसके सामने झुके, नंबर एक, जब किसी को पुकारें तो वो कम अज कम सुने तो सही, खुदा बहरा तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा लफ्ज है दुआ में कि जब उससे कोई दुआ मांगे तो कबूल करे। तीसरी बात है वो यनफाउनकुम, और वो तुमको नफा देते हैं? औ यदुर्रून, अच्छा कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? यहां रुक के जरा हल्की सी बात कीजिएगा। नंबर एक यस्माउन, इसके नीचे लिखिए अल्लाह सुबहान तला का नाम असमी। अल्लाह ताला का नाम असमी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यस्माउनकुम इशारा करते हैं इसमें कि तुम्हारे माबूद असमी नहीं हो सकते। इज तद उन, दूसरा नाम, जब तुम पुकारते हो तो सुनते हैं, नहीं सुनते तो दुआओं को कबूल करना अल्लाह का काम है। इसके नीचे लिख लीजिए अल मुजीब। अम्मन युजीबुल मुस्तर इजादाहु, 20वें पारे में हम पढ़ेंगे, माने वाला है इंशाल्लाह। तीसरी बात देखिए, वो यनफाउनकुम, क्या ये तुमको नफा देते हैं? इसके नीचे अल्लाह सुब्हान तआला का नाम अन्नाफे, अल्लाह की जात नफे देने वाली है। फिर चौथी यदुर्रून, जरर देते हैं, तो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला का नाम अद्दार, ठीक है। तो गोया कि आप कह लीजिए दलील से साबित कर दिया कि ये चार काम इनके हाथ में नहीं है, तुम्हारा रब करता है। इतना मंतकी अंदाज है, इंटेलेक्चुअल स्टाइल है कि कोई जवाब नहीं है। जवाब में ये तो कहते हाँ ये नहीं सुनते, हाँ ये नफा नहीं देते, वो देते नहीं। आप देखिए उनका जुमला हाईलाइट कर लीजिए 74 को। कालू, वो बोले, पूरी कौम की मत मारी गई। क्या बोले? बल्कि, यानी हमें इससे कोई केयर नहीं कि ये सुनते हैं, बोलते हैं, नफा देते हैं, दुआएं सुनते हैं, बल्कि क्या, बल्कि इसके आगे आप लिख लीजिए, हम इसलिए इनको पूछते हैं कि वजदना आबा अना कज़ालिक यफ़अलून, बल्कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते पाया। ये है हर मुशरिक की मुश्किल, सिर्फ इसलिए कोई काम करो कि हमारे बड़े करते थे। और यहां से पता चलता है कि अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। आप किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं, सुबह से शाम तक वहां कहें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, आखिर कोई बंदा आपको जो सुबह से देख रहा है ये करते हुए एक वक्त आपके साथ के पूछेगा कि भाई ये बताओ कि ये दीवार तुम्हारे कहने से हटी, रास्ता मिला? नहीं भाई। तुम क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरा बाप भी इधर आके यही करता था। ये होती उल्टी खोपड़ी। आज यही तरीका रस्मों में, यही रिवाजों में, यही इबादत के नाम पे है। और दुख के साथ कहूंगी कि दीन के नाम पे सजाई जाने वाली महफिलों में भी यही अंदाज है, रस्मी कलामी अंदाज। कुछ नहीं पता पल्ले पड़ रहा है कुरान के, नहीं, बच्चों का शोर देख लीजिए, आवाजें देख लीजिए, हंगामा बरपा है। सबको पता है कि हर कुरान खानी में ऐसे ही होता है, हम जाके बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, ऐसी साझा बातें भी करते रहते हैं, लंबी सी नशिस्त होती है, फिर उसके बाद कोई सिस्टर उठती हैं, लंबी सी दुआ करती हैं, एक दो नातें पढ़ती हैं, फिर खाना खुलता है, फिर बच्चों के शोर हंगामों में एक शादी का मंजर होता है, फिर हम घर चले जाते हैं। हम नहीं सोचते कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोग हैं जो आज दीन के नाम पर आने पर भी सोचें कि आज हमें यहाँ से क्या मिला। औरों को छोड़ दीजिए, आप पे बात करती हूँ, आप सुबह उठ के यहाँ आ जाते हैं, आपसे भी तो कोई पूछ सकता है कि क्या आपको यहाँ कुछ फायदा हुआ, कोई आपने सीखा, कोई सुना, कोई आपको इससे खैर मिली? आप कहें नहीं, वो मेरी अम्मा जाती थी तो वो कह गई थी बेटी तू भी चलती जाना, तो बेवकूफ़ी होगी ना। पता नहीं क्यों दीन के मामले में हमारी मत मारी जाती है, अक्ल ही नहीं इस्तेमाल करते, बस बल वजत ना बाना। यहाँ से एक और बात पता चलती है कि बाप दादा जो करते हों उसको करना आसान लगता है, क्योंकि वक्त का रिवाज उसको कबूल कर चुका होता है। अब आप देखिए, इब्राहिम होते ना तो यहाँ शुरू हो जाते बहसें करने हमारी तरह, तुम्हारे बाप दादा बेवकूफ़, ये बोला, नहीं, अच्छा चलो छोड़ो, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते। काला, फिर बोले, अफरा आई तुम, क्या बस तुमने देखा, अफरा आई तुम, चार लफ्ज हैं, क्या बस तुमने देखा, मतलब ये कि गौर करो। और ये कुरान का अंदाज है, अर आई तल्लजी यो कसीब बिद्दीन, अर आई तल्लजी, यानी गौर करो, फिक्र करो, क्या तुमने देखा, मां कुन तुम ताबुदून, ये किनको तुम पूछते हो, अजीब बात ही करते हो तुम। कभी तुमने सोचा मट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, लकड़ी का बुत है, ये किनको पूछ रहे हो? अंतुम व आबाओकुम अलअक़दमून, तुम भी और तुम्हारे पहले बाप दादा भी, तुम अक़ल नहीं इस्तेमाल करते, किनको पूछते हो? चलो पूछना भी है, किसी और चीज को पूछो जिसे कुछ तो फायदा हो, तो तुम तो पूछते रहो। यहां से आप देखिए ऐलान बरात है, खानदान हो, बिरादरियां हो, के रिश्ते हो, सच्ची तौहीद आने के बाद मुहाजरत होती है। कहने लगे फाइन नहमदुल्ली, तुम पूजो, ये तुम्हारे खुदा हैं, माबूद हैं, कुछ भी होंगे, बस लेकिन ये सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं, इल्ला रब्बल आलमीन, सिवाय रब्बल आलमीन के। अलल ऐलान, अपने अकीदे का इजहार कर दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, अब देखिए कितनी आयतें गुजर गई ना, 69 से लेकर 76 तक 8 आयतों में उनकी बात सुनी है, उन पे कोई तनकीद नहीं की। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा बस मेरा फैसला ये है कि मैं तो इनको नहीं मानता। ये है सच्चा मोमिन, मेरा माबूद और मेरा मददगार तो अल्लाह है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है और मेरा तवक्कुल उस पे है। पीछे देखिएगा कि बात उनके माबूदों पे की थी। अच्छा ये करते हैं, सुनते हैं, दुआ का जवाब देते हैं, अच्छा नफा देते हैं, नुकसान देते हैं, ये करके ना अब अपने रब की सिफात, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाने को दिल चाहता है अल्लाह के नबियों के अंदाज पे। अल्लाह हमें ऐसी मुदल्लल बातें करने वाला बना दे। पहले उनकी सुनी, अब कभी मेरा तो रब है, अब ये क्यों दुश्मनी की बातें करें इसको बाद में करेंगे, लेकिन जरा आप सीक्वेंस तो फील कीजिए इब्राहिम का, कहा देखो भाई मैं तो रब्बल आलमीन की बात करता हूँ, ये क्यों नहीं कहा कि इल्लल्लाह, अल्लाह कहा जा सकता था ना। देखिए लफ्ज अल्लाह से किसी को अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं होता जो रब्बल आलमीन कहने से होता है, दिल पे असर पड़ता है। सारे जहानों का रब, ओनर ऑफ द यूनिवर्स, पूरा ग्लोब, मशरिक मगरिब शमाल जनूब सूरज चांद सितारे, अच्छा इतनी बड़ी जात पे मेरा तवक्कुल है। और हर दौर का जो बादशाह होता है ना, जैसे हजरत इब्राहिम के दौर में नमरूद की बादशाह थी, वो खुद को रब कहता था, जैसे मूसा के दौर में फिरौन था, तो रब्बल आलमीन कहकर उसकी खुदाई पे भी लात मारी कि मेरा रब तो वो है जो जहानों का रब है, अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया। अब यहां से 1 2 3 करें, यहां भी आपको अल्लाह ताला की सिफात लिखाती हूँ, बल्कि साथ ही लिखते जाए, अल्लज़ी खलकनी वही मेरा खालिक है। पीछे कितनी सिफात थी, 5 नंबर इस पे लिख लें, खलकनी वो मेरा खालिक है, फहुवा यहदीन फिर वही मुझे हिदायत देता है, तो छठी सिफत अल हादी मेरा हादी वो है, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी और वही मुझको खिलाता है। क्या सिफत अल्लाह ताला की, रज़ाक खिलाने वाला, और वयस्कीन पिलाता है, खिलाना पिलाना रब का काम है कि मेरा रब रज़ाक भी है। अल्लाह ताला का नाम आपको पता है अल मोती भी है, मोती मीम आइन तो या अता करने वाला, पिलाता भी है मुझे खाना पीना, तुम तो अपने बुतों को खिलाते हो, मेरा रब मुझे खिलाता है, वह इजा मरे तू और जब मैं बीमार हो जाता हूं, पीछे के वो खिलाता वो पिलाता वो पैदा करता वो हिदायत देता है, अच्छी चीजें थी ना। जहां लफ्ज बीमारी आया तो क्या कहा, मैं बीमार होता हूं, हम कहते हैं सारे मसले ही आपकी वजह से, आप ठीक नहीं है, आप लोग ठीक नहीं है, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, आप आपने मुश्किलें डाल दी, हम तो बहुत अच्छे नहाए धोए साहब, हर बड़े से बड़े जुर्म और हर बड़े से बड़ी कमी कोताही पे आज हम मुसलमान क्या कहते हैं, मैंने यही करना था। यकीन कीजिए, यानी लोग किसी जगह दर्स हो रहा था और दर्स से पहले कभी तिलावत नहीं चलाई, क्योंकि पता होता है कि ये बेरोबी हो जाएगी और उस बेरोबी के अंदर आकर फिर मतलब लोग नहीं सुनते, तो मैंने नबी सल्लम के बारे में एक स्टोरी है जो पोइम की शक्ल में वो चलवाई, ये सोचकर कि चलिए नबी सल्लम का नाम भी आ जाएगा बीच में और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो खैर लोग जिस मूड में थे, 2-3 सिस्टर पीछे जको तके से बात कर रही थी, उनकी बातें भी मुझे समझ आ रही थी। खैर जो मेरे साथ सिस्टर थी वो उठकर उनके पास गई और उनको कहने कुछ भी कहा होगा उनके पास जाके कि ये इस चल रहे तो आप सुनिए वट एवर, तो उन्होंने ना उनको वापस बुला के कहा हम बड़े काम की बातें कर रहे हैं, ये जो बात करेंगी ना इससे बहुत अहम बात है। तो इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप भी कोई कुरान की बात ही कर रही होंगी इस वक्त, लेकिन इस वक्त हमें तवज्जो चाहिए। कहती नहीं नहीं हम कुरान की बातें नहीं कर रहे, हम बहुत अहम मसला डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या पता लोगों के रिश्ते आजकल कितने मुश्किल हो रहे हैं, नबी की बात चल रही, वाकया चल रहा। और वो इतनी, मैं देख रही थी, मुझे आवाज भी आ रही थी, लेकिन जाहिर है कि मैं उनको नहीं फील कराना चाह रही थी कि वरना वो शर्मिंदा होती, लेकिन उन्होंने उनको मुंह उठा के बिठा दिया कि आप चुप करें, हमें पता है कि इस वक्त हम जो बातें छेड़े हुए ना ये बहुत अहम है। तो याद रखिए, अपनी गलत बातों की दलील देना ये शैतान का काम है। इब्राहिम देखिए, वाइजा मरित तू, वाहिद मतकलम का सीगा है, आई एम, जब मैं बीमार होता हूं, हाँ हुआ यशवीन वो मुझे शिफा देता है, ये है अल्लाह ताला का नाम अशाफई, शिफा देने वाला, बीमारी मेरी शिफा अल्लाह की, ये है अदबुल अंबिया। इस पे पूरा एक दफा मैंने लेक्चर दिया था बहुत पहले, अदब अल्लाह के साथ, फिर माँ बाप के साथ, फिर उस्तादों के साथ, फिर अपने बराबर के साथ और सबके साथ। आज तो लगता है कि अदब दूर से छू के नहीं गया उम्मत मुस्लिमा को। सियासी लीडरों की बेदबी और मजहबी रहनुमाओं की बेदबी, बड़े छोटे का कोई फर्क ही नहीं रहा। किसने इब्राहिम को ये बात सिखाई कि तुम बीमारी अपने लिए लो? और यकीन करें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं ऐसे ही साथी हमारे इर्द गिर्द हैं। हर गलत बात वो कहते हैं ये हमारा ही कसूर है, और ठीक बात है तो ये बस दूसरों ने कोई कर दी, ये अल्लाह का कोई करम है, हमारे अंदर तो कोई खूबी नहीं। और मैं सोचती हूँ कि ये वो आजजी है जो अल्लाह को पसंद आती है। हाँ हम गलत करते हैं लेकिन अल्लाह ठीक करवा देता है। तो अल्लाह का नाम अशाफई वल्लजी युमीतुनी, और वो ही मुझे मौत देता है। मैं और आप तो खुद मर भी नहीं सकते, कोई मरता है? 10-10 साल बिस्तर पे लोग एड़ियां रगड़ के चले जाते हैं, लोग दर पर्दा दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इनको पीछे कर दे, उठा दे, ये कर दे, वो कर दे। वो मुझे मारता है और तुम यही, और फिर वो मुझे जिंदा करता है। दो बातें इस एकायत में, पहली तो अल्लाह के नाम लिख लीजिए युमीतुनी में, अल्लाह की जात में जो मुझे मारता है, अल ममीत। सुन के देखे अस्माउल हुस्ना की सीरीज में से, यकीन करें कि फिर तो मौत भी प्यारी लगती है कि मेरा रब मुझे मारता है। और इसी तरह से यहीन, वो जिंदा करता है। आप कह लीजिए अल्लाह के अल मुईद, मुईद दोबारा उठाने वाला, यादा दोहराना, और अल मुहयी, दोनों इसी एक लफ्ज में आते हैं, मुहयी जिंदगी के देने वाला। और इसी तरह या हय्यू या कय्यूम में आप अल हय पढ़ते हैं ना, तो इस लफ्ज यहीन में तीन नाम निकल रहे हैं, अल हईश, अल मुही और अल मुईद। वो ये सब काम मेरे करता है। कितना नबियों को ये सलीका था बात करने का। अच्छा अभी आगे बात चलेगी, लेकिन युमीत तो नहीं सुम्मा युहीन पे थोड़ी सी एक और बात आप लोग नोट कीजिएगा। हम होते तो क्या कहते, वल्लजी युहीन हाय सुम्मा युमीत तो नहीं, वो जो है जिसने मुझे आज पैदा किया हाय फिर अफसोस वो मुझे मार देगा। हमारी सारी नजर जीने पे है और मौत को हम खात्मा समझते हैं। इब्राहिम को देखिए, वो अपनी जिंदगी का आगाज इस मौत से करते हैं जो आएगी, और फिर जब जीऊंगा असल जिंदगी तो वो है। ये है एक मोमिन और एक काफिर का मौत का नुक्ता नजर। कितनों को बात समझ आ गई है? बात मौत से शुरू हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम मुर्दा हो, तुम जियोगे उस दिन जब तुम अपनी कब्रों में जाओगे। तो आज हम सब मुर्दा, मत गम करें इस दुनिया के, वल्लाही ये सब कुछ इस वक्त एक शराब है, एक धोखा है, पिघलती हुई बर्फ है जो हमारे हाथों में आने से पहले पिघल जाती है। शर्त क्या है कि हम अपने आप को ठीक करें। तो मौत पे नजर रखने वाले मौत की तैयारी करते हैं, फिर उनको इस दुनिया के गम बड़े गम नहीं लगते। वो कहते 4 दिन के गम में ये दुनिया भी अधूरी, गम भी अधूरे। हाँ सुम्मा युहीन, फिर है वो जिंदगी जिसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं बला हियाउन, वो जिंदा है तुम सोचते नहीं। और हकीकत है कि मोमिन मौत से प्यार और आखिरत की तैयारी करता है, उसकी जान नहीं निकल जाती मरने के नाम पे। जितना दुनिया से प्यार करेंगे ना, जिंदगी से, सेहत से, उतने बीमार रहेंगे। अपने आप को सेहतमंद करने का राज है कि अपनी जान से बेनियाज हो जाए, बहुत सेंसिटिव होना, गर्मी से बचो, सर्दी से बचो, पानी उबाल के पियो, छान के पियो, तो क्या मौत नहीं आती? ज्यादा जल्दी आती है, जरा कहीं ना कहीं 19-20 हो गई, वो जरा सी मादी कोई नहीं है, जिसे मादी नहीं उन जर्म्स का पकड़ के आपको पटक देगा। गरीबों के बच्चे ठंडी मट्टी पे आपने देखा होगा, छोटा सा कपड़ा जिस्म पे पहन के ठंडी जमीन पे खेल रहे होते हैं, उनको तो कोई ठंड नहीं लगती। और हमारे बबले गुबले जिनको इतने कपड़ों में लपेटा होता है, उनकी नाक बहती रहती है। तो फिक्र छोड़ दें, इस जीने की नहीं, मौत तो आनी है, खुशी की आए, चेंज अच्छी लगती है बंदे को। आप एक जगह रह के भी थक जाते हैं, आप कहते हैं छोड़ो अब थोड़े दिन कहीं और हो आते हैं। बंदा है मोमिन इस दुनिया में सिर्फ एक मेहमान की सूरत पे रहता है, फिर इंतजार करता है उम्मीद तो नहीं हाय मैं अल्लाह से मिलूंगा। आप देखें कितनों से जुदा होंगे, आप अपने ऊपर ले, माँ बहन अल्लाह हम सबको सलामत रखे, सबसे मिले हमें जो अल्लाह के नबी हैं, और शायद अल्लाह हमें अपना दीदार करा दे मौत के वक्त। तो कोई बात नहीं, रिश्तेदारों के पास तो बहुत दिन रह लिया, अब उधर चलते हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन असल मसला ये कि तैयारी कोई नहीं। तो साथ ही वल्लज़ी, वो जात जिससे मैं तमा रखता हूं, यहां भी हाईलाइट कर लीजिए, اللہ کی ذات جس پہ امیدیں لگائی جائیں. تمام ساری امیدوں کا مرجع اور ہر ایک خواہش تمنا کو پورا کرنے والا وہ رب ہے جس نے ہم سب کو وہ کچھ دیا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اللہ کی ذات پر امیدیں لگانے والے کبھی مایوس نہیں. اور لکھ لیں, اللہ کی ذات سے نظر اور غیروں پر امیدیں لگانا یہ زندگی کو غم سے بھر دیتا ہے. خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں اس بندے کی جو لوگوں کی طرف نظریں لگ دل کے لیے کبھی نہ جانے کس کس کے لیے کسی کے پاس وہ خزانے نہیں ہیں, اللہ کے پاس ہیں. کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اللہ تیری امیدوں کو بھر لانے. آپ اللہ کی یہ سوچ جاتی ہیں اور خود سے پوچھیں امیدیں کس سے, مانے شوہر سے, سسرال سے, سے کس سے, تم سے, یم سے, سب سے ہماری امیدیں ہیں. کم ہی امیدیں ہماری اللہ سے ہوتی کیونکہ ہم اللہ پہ لگاتے ہیں. اور اللہ دوسروں پہ نظریں لگانا زندگی کو مشکلوں میں بھرنا, غموں میں, دکھوں میں. تو لہٰذا قافت لکھ لیں اس کے نیچے, قدیر. دیکھیں جس کے پاس ہے وہی آپ کے کام کرے. آپ امید اس سے لگائیں جس بیچارے کو وہ کہاں تھا, تو کیا آپ کا وہ کام کر دے گا؟ بالکل بھی نہیں کرتا. تو رجائی کا ایک سورت عربی کی کا کوٹیشن ہے جس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تو میری سے تجھ سے, میں نہیں کسی اور کے اوپر, میں نے نہیں دیکھنا جو ہے, لیکن اے اللہ میں نہیں کسی اور کو اس قابل سمجھتا کہ میں اس پہ نظریں لگاؤں. پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سچی توحید آئے گی. کسی کی بات یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمل تو بڑے تھوڑے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن یہ کہہ دوں گا کہ اللہ اس دنیا میں میں نے ہمیشہ تیرے اوپر نظریں لگائی, میں نے نہیں کبھی کسی اور پر نظریں لگائی کہ اچھا یہ کام رب نہیں کرے گا تو کوئی اور کر دے گا. اور آج آپ یہ اپنے اندر لا کے محسوس کر کے دیکھیں, آپ ایسے کھلیں گے, ایسے خوش ہوں گے کہ آپ لوگوں کے آپ بادشاہ بن گئے, کیونکہ میری امیدیں میرے رب سے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرتے ہیں, اللہ پہ امیدیں لگانے, اللہ بڑی چیز کو بھی کہتا ہے یہ بھی بہت چھوٹی امید ہے کیونکہ میرا رب تو اس سے بہت زیادہ کچھ کر سکتا ہے. تو لہٰذا آپ پر میری امیدیں. اتما, اور لفظ تما میں کیا ہے؟ دیکھیے تما لفظ کتنا خوبصورت ہے, توئے میم عین لکھ لیجئے تما, ٹھیک ہے, اور توئے عین میم لکھ دیجئے تو تام. یہ جو لفظ تام ہے نا, کھانا, وہ بھی یہی چیز ہے. تما کا تھوڑا سا مکسچر چینج کریں تو بالکل ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات بندے کے اوپر اس طرح سے قدرت رکھتی ہے کہ انسان جب اس سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی بات کیا آتی ہے کہ میں امید تو اس پہ رکھتا ہوں, کس بات کی؟ اَن یغفر لی, کہ وہ مجھے بخش دے گا. کون سا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا؟ الغفور اور الغفار, دو نام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے, کہ مجھے امید ہے کہ وہ گناہوں کو بخشے گا. اور حقیقت ہے کہ پارڈن کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے, وہی بخشنے والا ہے. اللہ کی ذات گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتی ہے غفور ہو کے, بلکہ وہ لفوف بھی ہے, درگزر بھی کرتا ہے. اور اللہ کی ذات ایک جو ہے وہ الغفار بھی ہے, بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتی ہے. اور اللہ کی ذات ستار العیوب بھی ہے, عیبوں پہ پردے بھی ڈال دیتی ہے. تین باتیں ہیں. نمبر ایک, اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. پھر دوسری بات, اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اور تیسری بات ہے کہ اس کا اشتہار نہیں چھاپتا, لسٹ نہیں لگا دیتا کسی جگہ, یہ یہ گناہ تمہارے معاف کیے تھے, سب دیکھ لو فلاں کے یہ گناہ معاف کیے تھے, نہیں. اور وہ میرے گناہوں کو کس دن معاف کرے گا؟ جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا, یوم الدین, بدلے کے دن. تو کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام مالک یوم الدین کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ اور یہاں لفظ خطیئتی جو ہے نا, خطا سے, مسٹیکس جو ایسی ہو جاتی ہیں, کیونکہ نبیوں کے پاس ذنب نہیں ہوتے, ذنوب نہیں ہوتے نبیوں کے, بشری خطائیں ہر ایک کے ساتھ ہیں, اسی کی بات کر دی. اچھا اب آپ دیکھیے, گناہوں کی بخشش قیامت کے دن پہ وہ میری کرے گا, تو کیا قیامت کے آنے کا یقین نہیں اس میں دلا دیا ہے؟ कि मेरा रब कयामत लाएगा और उस दिन फिर सब कुछ उसके कब्जे में होगा। अल जब्बारून अल कहारून, तो इसमें अल्लाह ताला के नाम अल जब्बार की तरफ इशारा है और अल कहार की तरफ इशारा है। और क्यामत के दिन अल्लाह ताला रहमान होगा, उसका रहम है, उसकी तरफ इशारा है। और इसमें अल्लाह ताला के अल मुतकब्बिर होने में भी इशारा है कि उसके हाथ में सब कुछ, फालुल लिमा युरीद होने में भी इशारा है। जब वो क्यामत लाएगा कोई उस क्यामत को रोक नहीं सकेगा, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ। तो मैं तो बस उस पे नजरें लगाता हूँ। वल्लज़ी अतमौ यग़फ़िर ली ख़तीयती यौम अद्दीन। अभी तक इब्राहिम अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से मुखातिब थे, और जब मुखातिब हुए तो अब राह रास्त अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। लेकिन इन दुआओं पे आने से पहले हम अब इन पिछली सारी आयतों पे थोड़ा सा एक रिकैप करेंगे। पहला सवाल ये कि इब्राहिम ने आयत 77 में ये क्यों कहा कि ये बुत मेरे दुश्मन है, ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे दुश्मन है? सवाल है। आ जाइए ऊपर वापस, आयत 77 को देख लीजिए कि भाई ये बुत तो मेरे दुश्मन है। सवाल पैदा होता है कि नंबर एक, इब्राहिम ने ये क्यों कहा कि मेरे दुश्मन है, और दूसरी बात, क्या दुश्मनी है बुतों की? तो आपने इसलिए कहा कि उनको चिढ़ ना चढ़ जाए, ठीक है। अब देखिए कि कौम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल का कोई माकूल जवाब ही नहीं दे सकी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ज्यादा छेड़ने की बजाय अपनी बात कर दी। आज भी जब किसी को कुरान और सुन्नत की कोई बात बताए ना, तो लोग आगे से यही कहते हैं जी ये तुम्हारे बाप दादा के तरीके हैं, ये है वो है। तो इब्राहिम के इस अमल से हमें क्या पता चलता है कि ऐसे वक्त में कहना चाहिए भाई मुझे तो ये काम नहीं अच्छे लगते, मुझे नहीं ये पसंद। दूसरी बात ये है कि दुश्मनी क्या थी उनकी। तो पहली बात देखिए कि ऐसे बुत अमूमन अल्लाह की याद से रोक लेते हैं। जब आप किसी और पे जो नजरें रखेंगे तो उस वक्त अल्लाह तो भूल ही जाएगा ना। फिर दूसरी बात ये कि ये बुत बाहर भी बड़े खूबसूरत होते हैं, चमकते फुदकते, रंग लगे हुए, सुर्खियां लगी हुई, और ऊपर फूल पड़े हुए, खुशबुओं के छिटकारे, तो लोग उसमें चले जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए कि इन आयतों को जरा अल्लाह के नबी के तनाजर में भी देखिए। ये थी वो दावत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में दे रहे थे, और इसी की वजह से सारे खानदान कौम बरादरी से लड़ाई थी। अल्लाह यहां बता रहे हैं कि इब्राहिम ने वही बात कही थी जो आज मोहम्मद की जुबान से तुम सुनते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज तुम इस नबी के खिलाफ हो तो क्या बड़ी बात है। उन्होंने भी शाम को छोड़ा, फलस्तीन को छोड़ा, हिजाज को छोड़ा, और इस तरह की जगहों पे जाते आते रहे कि बिल आखिर तन्हा रह गए। और याद रखिए कि जो अरबों में बुत परस्ती थी ना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सौ साल बाद शुरू हुई। इसलिए अल्लाह ताला यही बात बताते हैं, और यही बात सूरत आल इमरान आयत 67 से 68 में हम पढ़ चुके कि मा काना इब्राहिम यहूदी वला नसरानी वला किन काना हनीफम मुस्लिमा व मा काना मिन अल मुशरिकीन, कि इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना ईसाई थे, वो तो यकसू मुस्लिम थे और वो मुशरिकों में से भी नहीं थे। लेकिन हकीकत ये है कि इब्राहिम के साथ ताल्लुक नहीं कर जो उनकी तालीमात पे। फिर दूसरी बात ये देखिए कि इस हिस्से में हमें एक और बात समझ आती है, अकीदा। इतनी लंबी चौड़ी इबादात की किसी की लिस्टें हो, वज़ाइफ की लिस्टें हो, नेकियों के अंबार हो, सोशल वर्क हो, इब्राहिम ने किसी को छेड़ा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अकीदा। आज के दौर में दोबारा इसी रिवाइवल की जरूरत है। सब बातों पे तनकीद करनी छोड़कर अगर आज के मुबल्लिगीन और उलमाए कराम सिर्फ और सिर्फ आज के मुसलमानों में फैले हुए शिर्क और बिदात को छेड़ दें तो उसकी इसलाह होगी तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अकीदा तो गिरा होती है, इसी से फिर इबादत आगे जाती है और दूसरी तरफ जाती है। फिर तीसरी, यहां से बाप दादा की अंधी तकलीद की तरफ इशारा मिल गया। अपना नफा नुकसान छोड़कर लोग वक्त के रिवाज को पूछते हैं, रोते भी हैं छोड़ते भी नहीं हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि किस्मतें बनाना और बिगाड़ना, इसमें जन्फा और दूसरे में आता है कि किस्मत का बनाना और किस्मत का बिगाड़ना, ये भी अल्लाह की सिफत है, कोई दुनियाला ये कर नहीं सकता। बुत दुश्मन है, कि अगर मैंने इन बुतों को पूजा तो मेरी दुनिया भी खराब होगी और मेरी आखिरत भी खराब होगी, मेरे लिए फायदा नहीं होगा। सूरत मरियम आयत 81 से 82 में भी आता, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, इन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बनाए ताकि वो इनके जरिए कुव्वत बने। हरगिज नहीं, कल्ला सयकफुरून बि इबादतिहिम, अनकरीब वो वक्त आएगा कि जब वो इनकी इबादत का इनकार करेंगे, वह यकूनून अलैहिम दिद्दा, और उल्टे पांव इनके मुखालिफ होंगे। तो यहां से तबलीग का खूबसूरत नुकता हमें मिल गया। अगर ये कह देते ना तुम्हारे दुश्मन है, तो मुखातिब जिद में चला जाता। जैसे हम कहते हैं भाई आप तो गलत काम करते हैं, नहीं हम करते हैं। अगले की बुराई को अपने ऊपर ले ले, बहसों में नहीं पड़ना, और थोड़ी बात करके दिलों पे असर डालना है। एक बात करे 10 सेकंड खामोश रहे, वो बात उसके दिमाग में घूमे घूमे घूमे, फिर उसको खुद अंदर से जवाब आएगा, मलामत करेगा, फिर दूसरी बात करे। ये जो बोलते ही जाना और तपड़ तपड़ करके एक हमला दूसरा, तो बाद अब अगला फिर कहते बस मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इट्स टू मच फॉर मी, मैं फिर बात करूंगा। तो बात करने वाले को बात नबी तुली करनी चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए, फिर फायदा होगा। फिर इसी तरह आप ये देखिए कि एक और चीज इसमें समझ आती है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम दुआओं पे चलेंगे, और वो क्या है कि इब्राहिम को अपने रब से कितना गहरा लगाव था। जिस चीज से आपकी जितनी मार्फत होती है ना, उतना आपको उससे प्यार होता है। आप बच्चों को देखिए, जो माएं अपने बच्चों को पालती पोसती रखती दिलाती दुलाती, उन बच्चों से माओ को और माओ को बच्चों से प्यार बहुत होगा। और जो बच्चे शुरू से दूसरों की गोदों में डाल दिए जाए, बस वह माओ के दिल में वो मोहब्बत नहीं होती, बल्कि पालने वाली से बच्चा ज्यादा खुश होता है। अब ये दुनिया की मिसाल है, अल्लाह के साथ बंदे का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हंगामी नौयत का हो ना, तो वो फिर दुनिया वाला एक ताल्लुक है। जब जरूरत पड़ी उसको बुला लिया, तस्बीहां निकाल ली, जाय नमाज खोल दिए। मार्फत, मार्फत बिल्ला, जितनी मार्फत उतना प्यार, जितना प्यार उतना लाड, उतनी उसकी नेमतों का एहसास, उतनी उससे मोहब्बत। तो रबूबियत को पहचानना असल में मार्फत है, और जिसको रब बना लिया फिर उसी से दुआएं, उसी से उम्मीदें, हे या कना बुदू या कनस्तई। सहाबा कराम के बारे में आता है कि जूती का तस्मा भी टूटता तो अल्लाह से मांगते, हम या कना बुदू या कनस्तईन कह कह कर नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो हम कहते हैं हाई ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह से होगा। तो जब तक अल्लाह के साथ ताल्लुक ठीक नहीं होगा, बाकी बातें ठीक नहीं होंगी।
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين